किसान जब फसल बोता है तो उससे वो कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है, और उसको उत्पादन करने के लिए कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं, जैसे उसको बीज, उच्च प्रकृति का बीज चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए, उसको समय पे पानी चाहिए आदि। तो हमें इन सब चीज़ों पे आंकड़े चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो किसान फसल बोने जा रहा है उसको उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध हो, समय पे खाद उपलब्ध हो, और अगर सूखा पड़ रहा है, मॉइस्चर डिस्टेंस है, तो उसको नहर में पानी उपलब्ध हो। तो ये हमें सब समय पे पता होना चाहिए। दूसरा स्तर पे देखें तो किसान की क्या लागत आई, क्या उसको बाजार में उसका मिल रहा है, क्या कृषि उसके लिए लाभप्रद है कि नहीं है। अगर वो कृषि लाभप्रद नहीं होगी तो किसान खेती करना बंद कर देगा, ये दूसरा आर्थिक पहलू है उसका। तीसरा, किसान को क्या उचित मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अपनी फसल का, वो बाजार में उसकी कितनी भागीदारी है, वो अपनी फसल किसको बेच रहा है, बिचौलियों को बेच रहा है या जहाँ पे उसको सबसे अधिक मूल्य मिल सकता है वहाँ बेच रहा है। तो ये इस पर भी आंकड़े हमें चाहिए और तुरंत चाहिए, यानी कि जब जिस समय चाहिए, जिस समय उसको निर्णय लेना है किसान को, उसी समय आंकड़े चाहिए। अब इसको अगर आप सामाजिक स्तर पर देखें तो ये देखा गया है कि जो भूख है या कुपोषण है वो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, और ये एक विडम्बना का विषय है कि जो किसान अन्न उत्पादन कर रहा है उसी के पास कुपोषण है। हमें कुपोषण के आंकड़े भी चाहिए और हमें जानने के लिए भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके भी आंकड़े चाहिए हमें। पर्यावरण के लिए अगर हम देखें तो ये देखें कि भाई अगर किसान ने जो फसल चक्र अपनाया हुआ है उससे पर्यावरण संरक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि खेती सिर्फ आज के लिए नहीं है, खेती हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, वो चलती रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में खेती के उत्पादन की मांग और कई गुना बढ़ेगी। तो हमें अपने पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। पर्यावरण में जैसे कि खेती जो जमीन है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम ना होने पाए, ऐसा फसल चक्र किसानों को अपनाना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं होना चाहिए ताकि भूमिगत जल समाप्त ना हो जाए, या कहीं पे वाटर लॉगिंग ना हो, सैलिनिटी ना हो, रेगिस्तान ना बन जाए जमीन का। तो इन सब चीज़ों पे हमें आंकड़े चाहिए कृषि में।
तो जब ये आंकड़े आप इकट्ठे करते हैं, जब स्टैटिस्टिक्स डेटा मॉनिटरिंग होती है, इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं।
देखिए जैसे अगर भारत का उदाहरण लें तो यहाँ पे मेरे ख्याल मेरा अंदाज है 14 करोड़ किसान परिवारों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ऐसे किसान एग्रीकल्चर होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो जब कृषि में जो भारत में पैदा होता है उसमें 14 करोड़ लोग निर्णय लेते हैं। अब हम हर एक के लिए अलग अलग पूछना संभव नहीं है, तो हम इसके लिए सांख्यिकी विधियों का, सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करते हैं ताकि सैंपल बेसिस पे हम जल्दी से आंकड़े उत्पन्न कर सकें, हमें पता चल सके। तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हमारे आंकड़े रिलायबल हों और जब चाहिए हमें तब उपलब्ध हो जाए, तो इसके लिए हम तकनीक यूज़ करते हैं। चैलेंजेस जो इसमें आते हैं कि किसी किसी देश की परिस्थितियों के अनुसार हमारे पास मेथोडोलॉजी नहीं है, हम कैसे डेटा कलेक्ट करें और कैसे उसको समय से उपलब्ध कराएं। दूसरी डिफिकल्टी ये आती है कि डेटा जब हम फील्ड से ले कलेक्ट करने जाते हैं तो वो एक बहुत ही महंगा तरीका है, किसी को किसान के पास जाके पूछना पड़ता है और उसको प्रोसेस करना, फिर उसको निष्कर्ष निकालना, ये दूसरा चैलेंज है। और एक चैलेंज ये भी होता है कि एक मेथोडोलॉजी हर सिचुएशन में या हर देश में नहीं अप्लाई हो सकती।
SDGs से जुड़े जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में सांख्यिकी किस तरह मदद करती है?
देखिए जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे बड़ा SDG जिसके लिए वो लीड कर रहा है वो है SDG 2 जीरो हंगर। इसके अलावा 5-7 और SDGs हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं या पावर्टी से संबंधित हैं, जिसमें FAO का कार्य उनको प्रभावित करता है। इन सभी SDGs के लिए जब ये SDG बनाए गए थे तो MDG से अंतर इसमें ये है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो इसके पहले थे से अंतर ये है कि SDG अपने साथ में एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ले गया है, वो साथ ही साथ तैयार किया गया है। तो उस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में करीब 236 इंडिकेटर हैं और टारगेट्स हैं हर एक के फिक्स करे गए हैं। इन सभी इंडिकेटर को बनाने के लिए हमारी सांख्यिकी व्यवस्थाओं की और जो सांख्यिकी नतीजे निकल के आते हैं, रिजल्ट अनुमान निकल के आते हैं, इनकी बहुत आवश्यकता है।
तो अगर आप कोई एक उदाहरण देकर हमें बता सकें कि अगर कृषि क्षेत्र का कोई एक आंकड़ा लेकर कि किस तरह वो बाजार और अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर असर डालता है।
जैसे मार्केट प्राइस ऑब्जर्वेशन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि क्या भाव चल रहा है बाजार में, क्या अंतर्राष्ट्रीय भाव में बाजार में चल रहा है, क्या हमारे होलसेल मार्केट में चल रहा है, क्या किसान को मिल रहा है, क्या कंज्यूमर में चल रहा है, तो कैसे मार्केट में प्राइस का ट्रांसमिशन होता है। अब अगर हमें इस हर एक जगह पे बिंदु पे हमें पता होगा कितना किस कमोडिटी का कितना प्राइस चल रहा है, तो हमें अंदाज लगेगा कि हम पहले से तैयार हो सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के जो प्राइस सिग्नल हैं वो कंज्यूमर तक आने से पहले हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, ताकि हमारा कंज्यूमर प्रभावित ना।
एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स पर जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है, उसमें क्या मुख्य मुद्दे हैं?
देखिए, उसमें सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा तो ये है, जैसा आपने इसका टाइटल देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब अगर हमें एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है एसडीजी को, तो उसको मेजर करना होगा। सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा तो ये है कि सभी इंडिकेटर्स जो निर्धारित करे गए हैं उन पर कितना आंकड़ा कहाँ उपलब्ध है, क्या कंट्रीज को कठिनाई आ रही है डेटा कलेक्ट करने में, क्या उनकी मेथोडोलॉजिकल डिफिकल्टी है, या उनके पास आवश्यक धन या तकनीक नहीं है कि वो आंकड़े कलेक्ट कर सकें, या उन्हें बाहर से विदेश से सहायता की जरूरत है ताकि उनको कोई सिखा सके कि किस तरह से आंकड़े कलेक्ट करे जाए। तो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा तो यही है। और दूसरा मुख्य मुद्दा जो है हमारा कि आंकड़े उपलब्ध तो हो जाएंगे लेकिन समय से उपलब्ध हो जाए, ताकि निर्णय समय से लिया जाए और आपदाओं विपदाओं को जो आ सकती है मार्केट में या कहीं भी व्यक्तिगत किसान के स्तर पर, उनको हम रोक सकें। ये अनुमान लगा कि कंट्रीज की क्षमता कैपेसिटी आंकड़ा उपलब्ध कराने की बहुत कम है, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया 50x2030। ये यूएन का एक प्रोग्राम है और उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और इसके थ्रू हम 2030 तक 50 देशों की मदद करेंगे और उनको हम ऐसा सर्वे सिस्टम देंगे जिसमें उनकी अधिक से अधिक आंकड़ा कलेक्ट करने की क्षमता बढ़ जाए।